बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और ज्ञान ध्वज जी का भी। तो सबको पहले प्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय। कल दोपहर में हम तृष्णा से आगे बढ़ गए थे और तृष्णा यानी प्यास ऐसा हमने देखा था। और ये प्यास हमारी दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है, माने हमारी तृष्णा दिन ब दिन बढ़ती ही रहती है। और जैसे जैसे तृष्णा बढ़ती है वैसे वैसे हमारे अंदर केवल तृष्णा ही नहीं रहती तो द्वेष भी बढ़ते रहता है और मोह भी बढ़ते रहता है। तृष्णा में हमने ये देखा कि वहां मैं हर बार सामने आता है, मुझे चाहिए, ये मैंने किया है, या फिर मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भी हमने देखा। और ये चाहिए नहीं चाहिए ये किसके कारण निर्माण होता है, तो वेदना के कारण निर्माण होता है। ये भी हमने देखा कि वेदना सुखद है तो हमें लगता है कि ये मुझे चाहिए, वेदना अगर दुखद है तो हमें लगता है कि ये हमें नहीं चाहिए। और वेदना कौन सी है ये समझ में नहीं आता, हमारी अवस्था संभ्रमित होती है, तो फिर वहाँ जो वेदना होती है वो दुखद भी नहीं होती और सुखद भी नहीं होती। तो ये मोह का कारण है, अविद्या का कारण है। उसके बाद में हमने उपादान देखा था और उपादान में चार प्रकार हमने देखे थे कि एक भौतिक वस्तुओं का लगाव रहना, उससे चिपक के रहना, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को जमा करना, ये भी एक उपादान है और वो हम छोड़ना नहीं चाहते। दूसरा उपादान हमने देखा था ये दृष्टि उपादान है, तो हमारा दृष्टिकोण वो पक्का होता है, हम अपने दृष्टिकोण को बदलना नहीं चाहते। तीसरा उपादान हमने देखा था शील और व्रत। तो शील जब हम पालन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, तो यहां शील का गर्व होना ये भी उपादान ही है, क्योंकि वहां उस अर्थ से हम शीलों को चिपक के बैठते हैं। यदि हमें कोई चुनौती देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है उसका, हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं रहते। और चौथा उपादान हमने देखा था वह है कि मेरा मैं से हम पूरी तरह से चिपक कर रहते हैं, हमें इस मैं से चिपकना यानी हमारे आत्मा से चिपक के रहना है, सोल से चिपक के रहना है, रूह से चिपक के रहना है, तो इस तरह से हम उस में अटके हुए रहते हैं। और ये हमने पंचस्कंद भी देखा था, पंचस्कंद भी दुखी ही है और पंचस्कंद को भी हम चिपके हुए रहते हैं। उसमें हमने फिर क्षण और पलों के बारे में भी जानकारी ली थी। उसके पश्चात हमने भव देखा था, भव यानी निर्माण होना, उत्पन्न होना, या उसे गर्भधारणा ऐसा भी कहते हैं, या कंसेप्शन जिसको कहते हैं वो भी कहते हैं। उसके बाद में हमने जाति या जन्म इसको भी देखा, और ये जाति ये भव पर आधारित है, भव पर निर्भर है, इसे भी हमने देखा था। तो यहाँ जन्म को देखते हुए हम अपना ये जो मांस का गोला है इसी को जन्म देना या इसी का ही जन्म होना ऐसी बात नहीं है। तो नए नए चीज जब कब हमें मिलती है, जैसे हमने देखा कि शादी की हमने, तो हमारा मानो जन्म हो गया वहाँ। जीवन के नए नए पड़ाव जब हम उसका अनुभव करते हैं, ये भी एक प्रकार का हमारा नया जन्म होता है। तो इस तरह से अलग अलग बातों को हमने जन्म के माध्यम से देखा, और जरा मरण ये जब हमने देखा तो जरा का मतलब अलग अलग बातों से हमने जोड़कर देखा है कि दांत का दर्द है, फिर सर का दर्द है, उसके बाद में गिर जाना है, कुछ जख्म होना है, बाल सफ़ेद होना है, झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर आना है, इंद्रियों का कमज़ोर होना है, ये सब बातें जरा में आती है। जरा यानी सिर्फ बुढ़ापा ऐसा नहीं है, तो ये सभी बातें जरा में हमने देखी है। और मरण में भी केवल मृत्यु ही है ऐसा हमने नहीं देखा, तो मृत्यु के अलावा और भी कुछ बातों को हमने देखा है कि हमें जो पता है, हमें जो मालूम है, उसे हम जब छोड़ते हैं तो उसका भी मृत्यु हो जाता है। तो इस मृत्यु को हमने स्वीकारना है, जो हमने पकड़कर रखी हुई बातें हैं उसको हम छोड़ते हैं तो माने उसका हम मृत्यु देख रहे हैं। लेकिन ये मृत्यु का स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन हमें उसका स्वीकार करना है। तो इस तरह से 12 निदान के बारे में हमने जानकारी ली थी, और अभी हम फिर वेदना और तृष्णा के बीच में आने वाले हैं। जैसे हमने कल देखा था कि एक खुफिया द्वार है, एक रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं, और वही एक रास्ता है वेदना और तृष्णा के बीच वाला। तो उस खुफिया रास्ते को हम थोड़ा सा विस्तार में आज देखने वाले हैं। वेदना और तृष्णा, इनके बीच में एक जंक्चर है जिसको संधि कहते हैं। यह शब्द पाली भी है और संस्कृत भी है, और संधि का मतलब है सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त होने के पहले जो प्रकाश हम वातावरण में देखते हैं उसको संधि कहते हैं। उसको ट्वाइलाइट कहते हैं। जुलाई अगस्त में आप अगर इंग्लैंड गए होंगे तो वहां संधि प्रकाश होता है, 9 बजे तक अंधेरा होता ही नहीं, रात के 9 बजे तक अंधेरा होता नहीं है, तो उसको ट्वाइलाइट कहते हैं। तो ये ही संधि है कि वो प्रकाश अभी रात नहीं हुई है लेकिन रात होने वाली है। तो यहां भी एक संधि है, एक जंक्चर है कि जहां से हम परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि रात दिन में परिवर्तित हो रही है तो प्रकाश हम देखते हैं, संधि देखते हैं, और दिन रात में परिवर्तित जब होता है तो हम संधि देखते हैं या प्रकाश देखते हैं। तो उसी तरह वेदना से तृष्णा तक हम जब जाते हैं तब वहां भी हमें संधि प्राप्त होती है, या सं ये परिवर्तन की जो बात है वहां आती है, लेकिन उसका फायदा हमने उठाना है। यहां इस वेदना और तृष्णा में और एक बात होती है कि यहां हम भवचक्र से ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर जाते हैं, व्हील से लेकर स्पाइरल में हम जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और दूसरी तरह हम इसको देखेंगे कि हम भौतिकता से आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं। इसलिए ये जो बीच वाला रास्ता हम अभी ढूंढ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अभी इस चक्र को छोड़ना है, भव चक्र को छोड़ना है और उसके बाहर निकलना है। और जब हम बाहर निकलेंगे तो आध्यात्मिकता की हमारी शुरुआत होगी। लेकिन समझो हम सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि अभी इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे भी जाने की जरूरत नहीं, पीछे भी जाने की जरूरत नहीं, बस बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी सिर्फ बैठे हैं तो भी वेदनाएं तो उत्पन्न होते ही रहती है। हम मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं और कोई वेदना मुझे उसका अनुभव नहीं आना चाहिए, ऐसा अगर हम बोलते हैं तो यह गलत बात है। वेदना तो होने वाली है, वो सुखद भी हो सकती है सिर्फ बैठे तो भी, या फिर दुखद भी हो सकती है, या न सुख न दुख वाली भी हो सकती है। अभी ये वेदनाएं कहां से आती है, तो ये वेदनाएं ये वेदनाएं किसको जन्म देती है, तो यह वेदनाएं तृष्णा को जन्म देती है। यानी तृष्णा के माध्यम से हम उन वेदनाओं की ओर खींचे जाते हैं। यदि सुखद वेदना हो तो हम तृष्णा की ओर खींचे जाते हैं, यदि दुखद वेदना हो तो हम द्वेष की ओर खींचे जाते हैं। लेकिन खास करके हम यहां तृष्णा को देख रहे हैं कि जो सुखद अनुभव हम लेते रहते हैं। तो सुखद वेदनाओं की तरफ तृष्णा के माध्यम से हम खींचे जाते हैं और फिर तृष्णा के माध्यम से उधर खींचे जाने के बाद क्या होता है, तो हम उस अनुभव को चिपक कर बैठते हैं कि ये अनुभव सुखद अनुभव है और मुझे ऐसा ही अनुभव आते रहना चाहिए। और ऐसा जो अनुभव हमें आता है तो उसको हम खोना नहीं चाहते, ऐसा ही अनुभव बाकी चलता रहे। अच्छा अनुभव है तो अच्छा अनुभव वो हम लेते ही रहे, उसको हमें खोना नहीं है, इस तरह की बात हमारे मन में आती है। यह अनुभव मुझे बार बार मिलना चाहिए, तृष्णा का अनुभव बार बार मिलना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। और ऐसा बार बार जब अनुभव हमें मिलना चाहिए ऐसा हमें जब लगता है, तब यही हमारी बड़ी गलती होती है। यही है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां हमारी बड़ी गलती होती है। यदि वेदनाएं दुखद हो, पीड़ा देने वाली हो, या कम से कम असमाधान देने वाली हो, तो जानबूझकर हम ऐसी वेदनाओं को दूर ढकेलना चाहते हैं, उसके पास जाना नहीं चाहते। हम उस अनुभव को, अनुभव से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि कैसा अनुभव है ये दुखद अनुभव है, दुख देने वाला अनुभव है। तो इससे कैसे मैं दूर जाऊं, कैसे उससे छुटकारा पाऊं, ये हम सोचते रहते हैं। और ऐसा जब सोचते हैं तब द्वेष उत्पन्न होता है। अभी यहां तृष्णा या लोभ उत्पन्न नहीं होता तो द्वेष उत्पन्न होता है, क्योंकि उस अनुभव को हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन वह अनुभव हमें अभी छोड़ता नहीं है, इसलिए हमें दर्द होता है, द्वेष पैदा होता है। लेकिन जब सुखद अनुभव नहीं है और दुखद अनुभव नहीं है, ऐसे दोनों बातें जब होती है तब हमारा मन कंफ्यूज्ड हो जाता है, संभ्रमित हो जाता है, किसका स्वीकार करूं और किसको छोड़ दूं ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये अवस्था जब आती है कि सुखद अनुभव को पकड़ूं या छोड़ूं, दुखद अनुभव को पकड़ूं या छोड़ूं, ऐसा अनुभव जब मुझे आते रहता है तब मेरी मन की अवस्था संभ्रमित होती है, और इसी को मोह कहा गया है, इसी को अविद्या कही गई है, इसको इंग्लिश में बिविल्डरमेंट कहा है, धुंधली सी अवस्था है, क्या करूं क्या ना करूं ये मुझे समझ में नहीं आता। अभी हम संवेदनाओं का, सेंसेशंस जिसको कहते हैं, उनका अनुभव लेते हैं, फीलिंग्स का अनुभव लेते हैं यानी वेदनाओं का अनुभव लेते हैं, और उनके माध्यम से हम प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। यहां प्रतिक्रियात्मक मन छुटा नहीं है, क्योंकि पूरे भव चक्र में प्रतिक्रियात्मक मन ही है, तो यहां हम उसके प्रति प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, और ये प्रतिक्रिया जो है 6 इंद्रियों द्वारा हम देना शुरू करते हैं, और उसमें मन भी शामिल है। तो इन इंद्रियों के द्वारा हम प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं, किसको, उन वेदनाओं को, संवेदनाओं को प्रतिक्रिया देते हैं, और यह प्रतिक्रिया 3 प्रकार से हम देते रहते हैं। लोभ के द्वारा हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं, द्वेष के द्वारा हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं, और मोह के द्वारा हम प्रतिक्रिया देते रहते हैं। और जब प्रतिक्रिया देते हैं हम, तो विपाक होता है, कुछ ना कुछ विपाक होता है, क्योंकि कर्म हमने कैसे किए हैं, लोभ द्वेष और मोह के आधार पर हमने कर्म किए हैं, तो उसका विपाक जरूर ऐसा ही कुछ निकल आता है। और वह विपाक क्या है कि हम भवचक्र में फिर एक बार चक्कर मारते हैं, उसका विपाक यही है। लोभ द्वेष मोह के अंदर अगर हम गड़ गए तो एक बार फिर हमें भवचक्र की चक्कर मारनी होगी। अभी भंते जी एक अलग उदाहरण देना चाहते हैं। भंते कहते हैं कि समझो कि ये ऐसी बातें हैं उनको हम प्रतिक्रिया नहीं देते। समझो वेदनाएं हम पर हावी नहीं होती, लोभ द्वेष मोह को हम प्रतिक्रिया नहीं देते, और सभी प्रतिक्रियाओं को हम रोक देते हैं, तो फिर क्या होता है? तो बंते जी कहते हैं कि ये अवस्था अगर हमारी आई तो हमें बुद्धत्व प्राप्त जरूर हो सकता है, जरूर नहीं उसी समय होगा, उसी समय हमें बुद्धत्व प्राप्त होगा। कब होगा? जब किसी को भी हम प्रतिक्रिया नहीं देते, लोभ को देते हैं ना, द्वेष को देते हैं ना, मोह को देते हैं, या वेदनाओं को हम कोई प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब प्रतिक्रियाओं से हम बिल्कुल हट जाते हैं, तब क्या हो जाता है? सृजक मन तैयार हो जाता है, सृजनात्मक हम बनते हैं, सृजनशील हम बनते हैं। और सृजनशील बनना इसका मतलब है बुद्धत्व को प्राप्त करना। बंते जी ने दो तीन वाक्यों में ही कहा कि हम बुद्धत्व तक जा सकते हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। लेकिन बंते जी कहते हैं कि ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। कहना बहुत आसान है कि ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, एक बार जाके वहां बैठ जाएंगे हम, अभी ये सोच रहा हूं मैं कि ये नहीं करने का है, वो नहीं करने का है, वो नहीं करने का, तो वहीं आपको बुद्धत्व प्राप्त होना चाहिए। लेकिन फिर उठते हैं और फिर दूसरा दिमाग शुरू हो जाता है, दूसरी मन में बातें शुरू हो जाती है। तो इसीलिए भंते चेतावनी भी देते हैं कि भाई ये बोलना बड़ा आसान है, करना बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी भंते जी आशावादी है और वे हमें भी आशावादी बनाते हैं। वे कहते हैं कि ये हो सकता है, हमें बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। उसके दो मार्ग बताते हैं, दो मार्ग में बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। पहला मार्ग है, उसको सडन वे कहते हैं, सडन वे तुरंत मार्ग, तुरंत मार्ग। इस तुरंत मार्ग में क्या होता है कि हम एक ही घाव में भव चक्र के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, बस हो गया बुद्धत्व प्राप्त हो गया। भव चक्र को तोड़ ही देना है, वो घूमते रहे, घूमने की बात तो छोड़ दो, उसको एक घाव लगा दिया, तोड़ दिया के भव चक्र में से हम बाहर निकल आए। तो ये एक मार्ग बताया है, सडन वे। और दूसरा है मार्ग, उसको ग्रेजुअल वे कहा है या क्रमशः उसको कहेंगे हम, धीरे धीरे बनने वाला मार्ग। तो धीरे धीरे बनने वाला जो मार्ग है या धीरे धीरे लेके जाना वाला, बुद्धत्व की ओर लेके जाना वाला मार्ग है, उसमें हम क्या करते हैं, तो हमारी गति धीरे धीरे हम कम करते हैं, धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं और धीरे धीरे उस भवचक्र को शांत करते हैं, स्थिर करते हैं। भवचक्र बहुत घूमने वाला, बहुत स्पिनिंग उसका इतना जोर से है कि उसको खाली हाथ लगाए तो हाथ ही कट जाएगा, इतना वो घूमने वाला है। तो उसको धीरे धीरे थोड़ा सा उसका स्पीड कम करनी है, ब्रेक लगाना है और फिर उसको क्या करना है, स्टेबल करना है, स्थिर करना है। तो ये दो मार्ग बताए हैं, धीरे धीरे जाने वाला और दूसरा है एकदम से प्राप्ति होने वाला मार्ग। अभी एकदम से या सडन वे या तुरंत हमें जो कोई प्राप्ति होनी है उसके लिए भंते जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। बाह्य नाम का एक भिक्षु है और बाह्य नाम का भिक्षु जहां बुद्ध ठहरे हुए हैं वहां वो आया है। ये बाह्य की कथा सुत्तपीटक में उदान में आई है, सुत्तपीटक इसका रेफरेंस अगर आपको चाहिए तो सुत्तपीटक में उदान में ये कथा आई है। तो इस बाह्य को बुद्ध को मिलना है, बुद्ध को मिलने के लिए वो बेताब है। उसने बुद्ध को देखा नहीं है, पहले देखा नहीं है, और क्योंकि उसकी दीक्षा देश के कोई और कोने में दूर दराज में हुई होती है, उसने बुद्ध को देखा नहीं है। लेकिन अभी वो बुद्ध को मिलने आया है इधर, तो बाह्य का वहां आगमन होने के पहले ही बुद्ध भिक्षाटन के लिए गांव में चले गए हैं। और गांव में चल जाने के बाद वे भिक्षाटन कर रहे हैं, तो उस समय बाह्य वहां जाके पहुंचता है, जहां बुद्ध ठहरे हुए हैं वहां जाता है और उन बाकी भिक्षुओं को पूछता है कि बुद्ध कहाँ है। तो बाकी भिक्षु कहते हैं कि बुद्ध तो अभी भिक्षाटन के लिए गए हैं। वह पूछता है कि कौन से रास्ते से गए, तो फिर वो रास्ते से वो भी पीछे पीछे जाता है और दूर से बुद्ध को पहली बार देखता है। और दूर से ही बुद्ध को आवाज देता है कि रुकिए, मुझे कुछ आपसे पूछना है। लेकिन बुद्ध उसकी बात को सुनते नहीं है, वे आगे आगे चले जाते हैं। फिर दूसरी बात, उतावला होकर वो बोलता है, रुकिए, मुझे कुछ उपदेश चाहिए। फिर भी बुद्ध चुप बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं है, बस आगे आगे ही चलते रहते हैं। फिर जोर से चिल्ला के बोलता है, रुकिए, मुझे उपदेश चाहिए, अभी उपदेश चाहिए, हाँ तुरंत चाहिए, ऐसा बोलता है। और उस समय ऐसा रिवाज था, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध को अगर किसी ने 3 बार रिक्वेस्ट की तो बुद्ध उसको जवाब देते हैं। तो यहां फिर बुद्ध वहां रुकते हैं। और फिर जो जिसने किसी ने सवाल पूछा हो और उस पर उसका कुछ भी परिणाम होने वाला हो, फिर भी बुद्ध उसका जवाब देते थे। तो बुद्ध वहां रुक गए फिर और मुड़कर उसको देखा, पीछे मुड़कर देखा कि कौन है ये बाह्य भिक्षु है। और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए वो ये गाथा कहते हैं, ये बोलते हैं कि देखने में केवल देखना है, सुनने में केवल सुनना है, स्पर्श में केवल स्पर्श करना है, स्वाद लेने में केवल स्वाद लेना है, गंध लेने में केवल गंध लेना है, विचार करने में केवल विचार करना है। इन पंक्तियों को बाद में लिख देंगे उधर, आगे चलेंगे हम। तो इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा वो बताया गया है, इन द सीन ओनली द सीन, इन द हर्ड ओनली द हर्ड, इन द टच्ड ओनली द टच्ड, इन द टेस्टेड ओनली द टेस्टेड, इन द स्मेल्ड ओनली द स्मेल्ड, इन द थॉट ओनली द थॉट। इतना ही बाह्य ने सुना और फिर बुद्ध मुड़ गए और आगे भिक्षाटन के लिए चले गए। और ये यहां का वहां का वहीं खड़ा हो गया। बुद्ध तो चले गए और उसी समय उसी वक्त वो निर्वाण, उसको निर्वाण प्राप्त हो गया। उसी वक्त बुद्ध तो चले गए। तो अभी ये मेरा सवाल है आपके लिए कि हम तो कितने बार सुनते हैं, कितने बार स्वाद लेते हैं, कितने बार गंध लेते हैं, क्या क्या कितने बार करते हैं, लेकिन हमें ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, आगे जाएंगे। इसको सडन वे कहते हैं या तुरंत प्राप्ति का मार्ग ऐसा कहते हैं। इन गाथा से बुद्ध ये कहना चाहते हैं कि प्रतिक्रिया मत दो। जो कोई भी कुछ पूछता है बोलता है तो प्रतिक्रिया नहीं देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा मन हमेशा प्रतिक्रिया देने के लिए उतावला रहता है, उत्सुक रहता है। कोई कुछ भी कहे तो मेरे दिमाग में बिल्कुल वो घूमता है और तुरंत मैं जवाब देने के लिए तैयार हो जाता हूं। तो यहां प्रतिक्रिया मत दो ये कहा है बुद्ध ने। इसका मतलब सुनने में केवल सुनना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनने में केवल सुनना है, हम सुनने में बहुत कुछ मिलावट हमारे अंदर आती, मिलावट बहुत है, सुनना कम है और बाकी बातें मिलावट की ज्यादा है। इसलिए वो मराठी में कहावत है, हिंदी में है या नहीं मालूम नहीं, नली फुंकीली सोनारे इकड़ून तिकड़े जाई वारे। तो आपका हिंदी में है कुछ? हाँ, मराठी में बोला ना, कैसा समझेगा? तो जब हम सुनते हैं तो सोनार जैसा उसकी नली होती है, वो फूंक मारता है तो यहाँ से फूंक मारता है और उधर से वो चले जाती है। तो वैसे ही हम सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से हम उसे तुरंत छोड़ देते हैं। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम सुनने में सुनने की क्रिया नहीं करते, उसमें बहुत मिलावट होती है, बहुत सारी बातें उसमें हम मिला देते हैं और सुनना कम और बाकी की बातें ज्यादा, ऐसा हमेशा होता है। जब सुनते हैं तो वो ध्वनि आपके कानों में गूंजना चाहिए, वो घूमना चाहिए। और उस ध्वनि को सिर्फ सुनते रहना है, प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ध्वनि को सुनते नहीं हैं। जैसे एक आधा सुंदर पुराना ऐसे गीत लगा है तो हम गीत खाली सुनते नहीं हैं। अरे ये कौन से पिक्चर का है, इसमें कौन सा हीरो था, हीरोइन कौन सी थी, वो गाना बाजू में ही चला गया। तो हमारा अभी मिलावट का काम शुरू हो गया है। खाली सुनने में सुनना ये हम नहीं करते। बड़ा कितनी सुरीली आवाज है, सुनना है सिर्फ, लेकिन वो सुनने के साथ साथ हम दूसरी बातों को सोचते रहते हैं। अरे ये हीरो अभी मर गया या जिंदा है कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या बढ़िया काम किया था, ये चल रहा है हमारा गाना बाजू में रह गया। यानी सुनने में सुनने की क्रिया नहीं करते हम। ये इसमें हम सब शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल अलग हूँ और आप बिल्कुल अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रशील भी उसमें शामिल है, सब लोग उसमें शामिल है। क्योंकि हम अभी भव चक्र में ही घूम रहे हैं, भव चक्र का ही चक्कर लगा रहे हैं, अभी इधर मुड़े ही नहीं हैं। यदि हम बाह्य को बुद्ध ने जिस प्रकार से बताया उस तरह अगर हम करते हैं तो हमें भी एक झटके में बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकती है, ये हो गई ऐसा नहीं कहा मैंने, हो सकती है। आप भी इस चक्र को घुमाना बंद कर सकते हैं, यानी आपके हाथ में है सब कुछ। ये चक्र को बंद करना या घुमाना ये मेरे हाथ में है, क्योंकि चक्र यानी मैं हूं और मैं ही घूम रहा हूं और मैं ही मुझे घुमा रहा हूं, तो ये सब मैं ही है। तो मुझे मैं रोक भी सकता हूं और उसको घुमाते भी रह सकता हूं। अभी भंते कहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये नामुमकिन लगेगा कि अरे ये सुन लिया और बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ऐसा कभी है क्या? ये नामुमकिन है ऐसा हमें लगता है, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसे कितने बार हमने सुना है, भंती जी को भी सुना है हमने, हा? तो हमें तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। नामुमकिन जरूर है लेकिन कठिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। सॉरी, नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। अगर हम करते हैं तो मुमकिन है, और यदि नहीं करना है तो ये नामुमकिन है। अभी ये जो क्रमशः चलने वाला जो मार्ग है, धीरे धीरे बढ़ने वाला जो मार्ग है, उसको लेकिन हम अपना सकते हैं, उसके जैसा हम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो मार्ग है, ग्रेजुअल वे जिसको कहा है, ये कभी ना कभी घटने वाली बात जरूर है। उसको समय लगेगा, तुरंत नहीं होगा ये, लेकिन हमें बुद्धत्व प्राप्त कभी ना कभी जरूर हो सकता है। तो ये आशावाद इस ग्रेजुअल वे से हमें पता चलता है, ग्रेजुअल वे से मिलता है। तो फिर ग्रेजुअल वे से या क्रमशः इस तरह से हमें बुद्धत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो भंते जी कहते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अगर आप अध्ययन करते हैं, स्पष्ट रूप से उसे जानते हैं, तो आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है, आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। सप्त विशुद्धि मार्ग का आप आचरण करते हैं तो जरूर आपको बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। दस भूमि का अगर आप आचरण करते हैं तो जरूर आपको इसका अनुभव मिल सकता है। और फिर भंते जी कहते हैं कि 12 निदान को अगर हम ठीक तरह से समझ लेते हैं तो भी हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 निदान भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना आर्याष्टांगिक मार्ग है, 10 भूमि है या अलग अलग शिक्षाएं, त्रिशिक्षा भी कहा है, शील समाधि प्रज्ञा ये भी कहा है बुद्ध ने, तो ये तो होता ही है, इनसे होता ही है, लेकिन 12 निदानों के माध्यम से भी हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। अभी इस 12 निदानों में दो निदान बहुत अभी इंपॉर्टेंट है, वह है, एक है दुख और दूसरी है श्रद्धा। ये दो निदान के माध्यम से हम ऊपर बढ़ सकते हैं, हमारा प्रोग्रेसिव वे जो है वो हो सकता है, या ग्रेजुअल वे की ओर हम बढ़ सकते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद में जो वेदना है, तो वेदना को ही दुख कहते हैं, वेदना को ही दुख कहते हैं, और यह दुख या वेदना जो है यह वर्तमान जीवन का विपाक है। यह दुख जो है वर्तमान जीवन का विपाक है, वर्तमान जीवन का यह परिणाम है कि हम दुखी हैं। और दूसरी बात कही है वो है श्रद्धा। वैसे देखा जाए तो वेदना से संबंधित अगर दुख है तो श्रद्धा से संबंधित तृष्णा है, श्रद्धा से संबंधित तृष्णा है। और तृष्णा को अगर हम रोकते हैं तो हमारी श्रद्धा वहां बढ़ जाती है। तो अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं हमने देखी है, वेदनाएं देखी हैं, इनके माध्यम से हम पूरी तरह से इन बातों से जकड़े हुए हैं या इन यह बातें हम पर हावी हो गई है, संवेदनाएं वेदनाएं और उनको हम तृष्णा के माध्यम से प्रतिसाद दे रहे हैं। और प्रतिसाद अगर तृष्णा के माध्यम से हम दे रहे हैं तो हम भवचक्र में भी फिर बार बार घूम रहे हैं। ऐसा तो हम अभी बार बार कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरह से अगर हम करते हैं कि ये जो प्रतिक्रिया हम बार बार दे रहे हैं, वो प्रतिक्रिया अगर हम देना बंद कर दें तो फिर हम दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। प्रतिक्रिया देना बंद करना है। प्रतिक्रिया देना बंद कब करते हैं? जब हमें समझ में आता है कि यह संवेदनाएं वेदनाएं ये सब दुख का कारण है, वेदना का कारण है, तो इससे हमें कोई समाधान मिलने वाला नहीं है। ये जब हम समझते हैं, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बात जब हम समझते हैं तब वहां दूसरा अनुभव हम लेने की शुरुआत करते हैं। समझना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि इससे अभी तक मुझे जो कुछ मिला है वो असमाधान ही मिला है, दुख ही मिला है, अभी इसको मैं प्रतिसाद देना बंद कर दूं। ऐसा मैंने कहा है लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई, मैंने सिर्फ बोला है कि मैं उसको प्रतिसाद नहीं दूंगा। लेकिन हमारी कमजोरी ऐसी होती है कि मैं बोलता हूं ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन कुछ समय के बाद फिर लगता है अरे यार करने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा करने से क्या हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसे एक कहानी मुझे याद आई कि कोल्हाला का मतलब कोल्हाला कोला फॉक्स, फॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोमड़ी। तो लोमड़ी को एक बार एक भक्ष मिलता है, कोई प्राणी मरा हुआ है वो मिल गया उसको, लेकिन उसने उस दिन ये तय किया था कि आज मेरा उपवास है, आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं। अभी वो भक्ष को तो देख रहा है, सामने पड़ा है और यहां मैंने ठान लिया है कि आज उपवास है, खाने का नहीं कुछ। तो थोड़ी देर रुकने के बाद उसका मन कहता है अरे थोड़ा सा इतना इतना खाए तो क्या फर्क पड़ता है, उपवास तो है लेकिन इतना इतना खाए तो क्या होता है। तो इतना सा ही टुकड़ा वहां से निकाल लेता है टुकड़ा और खा लेता है। नहीं मेरा उपवास तो चालू है बोलता है, इतना इतना तो खाया मैंने। बाद में फिर और उसको लगता है अरे कौन देख रहा है, उपवास किसको मालूम है, मुझे ही मालूम है। तो और थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा वहां से निकालता है फिर खा लेता है। फिर बोलता है अरे यार मेरा उपवास है यार, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है ये। फिर सोचते रहता है, फिर बोलता है इतना तो खाया, अभी इतना इतना खाया तो क्या फर्क पड़ता है। फिर इतना खाता है वो और इतना करते करते वो पूरा भक्ष है वो खत्म कर देता है। बोलता है उपवास तो पकड़ा था लेकिन किसको मालूम था कि उपवास पकड़ा है, मुझे ही मालूम था। तो ये जो हमारी तृष्णा है ये कैसे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। हमें लगता है कि यार यार छोड़ दूं मैं ये ना करूं, लेकिन धीरे धीरे हम उधर ही बढ़ते हैं और पहले जितना नहीं किया था उससे और ज्यादा हम करते रहते हैं। तो ये क्यों होता है, तो हमारा अस्तित्व ही संस्कारित है। हम कंडीशनड लाइफ में जीते हैं, संस्कारित जीवन है हमारा, संस्कृत जीवन है हमारा, इसलिए हम ऐसा करने वाले ही है। जब तक ये कंडीशन माइंड से अनकंडीशन माइंड की ओर जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम पक्का जो इरादा है वो हमारा नहीं बना सकेंगे। और ये जब तक हम नहीं बनाते, तब तक ये दुख चालू ही रहता है, दुख जारी रहता है। लेकिन अभी हमने ठान ली है कि मेरी जो तृष्णा है उसको अब थोड़ा थोड़ा मैं कम करूं और इस अनुभव को थोड़ा थोड़ा ढीला करूं। तृष्णा का अनुभव जो आ रहा है या ले रहा हूं मैं, उसको धीरे धीरे मैं कम करूं, ढीला करूं उसको, उससे अलग होने की कोशिश करूं। और फिर ऐसा जब सोचता है तो जब बातें आते रहती है तृष्णा की या और कोई बातें आते रहती है, तो यहां वो अभी उतनी चिंता नहीं करता जितनी पहले करता था। तो धीरे धीरे अभी वो उसकी ओर बढ़ रहा है, यानी उसने अपने मन में अभी क्या कर लिया है, निश्चय कर लिया है, संकल्प कर लिया है। ये संकल्प बहुत जरूरी है। तो मेरा दूसरा सवाल यहां ये है कि हमें अगर बदलना है तो हमें क्या क्या संकल्प करने होंगे ताकि हम निर्वाण की ओर जा सके। तो यहां वो संकल्प करता है और उसकी रुचि जिस चीज में पहले ज्यादा बड़ी थी, उसकी रुचि अभी उसमें धीरे धीरे कम होने लगती है। और ऐसा धीरे धीरे वो गहराई में जब जाने लगता है, तब उसे वह ऐसा सोचने के लिए शुरुआत करता है कि अभी ये दुख का जीवन बहुत हो गया, अभी आध्यात्मिकता क्या है, लोकोत्तर अवस्था क्या है, उस तरफ मैं झुकूं, उस तरफ मैं जाऊं, इस तरह से अभी वो सोचने लगता है। ये टर्निंग पॉइंट है उसका, कि उसने अपने संकल्प किया है, मन में ठान लिया है कि ये नहीं करूंगा मैं, अभी इसको कम करूंगा, उसको कम करूंगा, ऐसा निश्चय करके अभी धीरे धीरे फिर वो आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। और जब आध्यात्मिकता की ओर जब वो बढ़ता है, तब वहां दुख से श्रद्धा पैदा होती है, दुख से श्रद्धा का निर्माण होता है। यानी हम धीरे धीरे अगर ये छोड़ते जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी भी श्रद्धा बढ़ने लगेगी। श्रद्धा का अर्थ है हृदय को रखना या हृदय पर रखना। तो हमारा मन अभी यहां संस्कारित चीजों पर हम नहीं रख रहे हैं, तो हम कौन सी चीजों पर रख रहे हैं, असंस्कारित चीजों पर हम अपना मन अभी लगा रहे हैं, यही चेंज है। अपना मन वहां लगा रहे हैं, इसका मतलब हमारी श्रद्धा उसमें हम बढ़ा रहे हैं। अभी हम अधिक से अधिक असंस्कारित बनने की कोशिश कर रहे हैं, आध्यात्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोकोत्तर स्थिति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसको जैसे के प्राप्त करना, क्योंकि कोशिश ही अगर नहीं है तो प्राप्त करना दूर की बात है। तो अब यहां कोशिश करते हैं और कोशिश करते करते श्रद्धा में भी बढ़ोतरी होते रहती है, हमारी श्रद्धा अभी अधिक से अधिक बढ़ रही है। शुरू शुरू में हमारी श्रद्धा संभ्रमित अवस्था में रहती है, धुंधली सी रहती है, ये होगा या नहीं होगा, इस तरह का संभ्रम हमारे मन में होता है। लेकिन बाद में हम पूरी तरह से निर्णय लेते हैं और धीरे धीरे हमारी श्रद्धा मजबूत होती है, हमारी श्रद्धा भी दृढ़ हो रही है, पक्की हो रही है। और यह श्रद्धा किस पर पक्की हो रही है? तो त्रिरत्नों पर हमारी श्रद्धा अभी पक्की बन रही है। बुद्ध धम्म संग यह मेरे श्रद्धा स्थान है, ऐसा मैंने अभी सोच लिया है। बुद्ध धम्म संग में ही आध्यात्मिक आचरण है, यह मैंने जान लिया है। बुद्ध धम्म और संघ में ही हमारा आचरण है, ऐसा हमने जान लिया है। और यह भी हमने अभी जान लिया है कि इससे ऊंचा अभी कोई आदर्श मेरे जीवन में बाकी बचा नहीं है। किससे ऊंचा? त्रिरत्न से ऊंचा कोई भी आदर्श अभी बचा नहीं है या बाकी नहीं रहा है। और ऐसी श्रद्धा मेरी अभी बढ़ने लगती है तो फिर पूरे जोश के साथ मैं अब शरणगमन करता हूं, पूरे जोश के साथ अब शरणगमन करता हूं। तो तीसरा प्रश्न है चर्चा के लिए कि हम जोश में आकर कब शरणगमन करते हैं? खाली कोई नाच रहा है और जोश आ रहा है, बस अभी मेरा शरणगमन हो गया, ऐसी कोई यहां बात नहीं है। ये पूरे सूझबूझ कर सोच समझ कर ये सब मैंने किया है, मेरा आदर्श यही है, मैंने जान लिया है और अब बड़े उत्साह से जोश से मैं अभी शरणगमन करने के लिए पूरा तैयार हो गया हूं। अभी यहां वेदना से तृष्णा उत्पन्न होने के बजाय यहां दुख से श्रद्धा उत्पन्न होती है। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होने के बजाय दुख से अभी श्रद्धा उत्पन्न होती है। असंस्कारित अस्तित्व से अभी संस्कारित अस्तित्व में हम प्रवेश करते हैं। असंस्कारित अवस्था से संस्कारित अवस्था से असंस्कारित अवस्था में हम प्रवेश करते हैं। और इस मोड़ पर जब हम आते हैं तब भव चक्र को हम पूरी तरह से छोड़ देते हैं। इस मोड़ पर जब हम आते हैं तो भव चक्र को पूरी तरह से छोड़ देते हैं और ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग को अपनाते हैं। ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग को अपनाते हैं, इसका दूसरा भी मतलब यह है कि प्रतिक्रियात्मक मन को छोड़कर सृजक मन को हम अपनाते हैं। और इस मार्ग पर जब हम आरूढ़ हो जाते हैं तब हमें यह मार्ग कहां लेके जाता है? निर्वाण तक लेके जाता है। इस मार्ग पर अगर पूरी तरह से हम आरूढ़ हो जाए तो हम निर्वाण तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमने दुख से श्रद्धा कैसे प्राप्त होती है ये भी देखा है और वेदना से तृष्णा के बीच का जो रास्ता है वो हमने कैसे ढूंढ के निकाला है। दो मार्ग से हमने देखा है, एक सडन वे एंड दूसरा है ग्रेजुअल वे। तो इस मार्ग से कोई भी एक मार्ग से हम उस मार्ग यानी वेदना और तृष्णा के बीच में से हम बाहर निकले हैं और दुख से हमारी श्रद्धा का निर्माण हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहां रुकेंगे हम। थैंक यू।